أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ہیں آپ لوگ؟ الحمد لله. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بہترین طریقے سے آج کے اس پارے کا حق ادا کر سکیں. آج نہ صرف یہ کہ ہم 1/3 قرآن کو پورا کرنے والے ہیں بلکہ اپنے ایمان کو بھی بڑھانے والے ہیں. پارہ نمبر 9 اور 10 ایک سنگ میل ثابت ہوتا ہے ہر سال ہمارے اور ہماری جنت کے بیچ میں. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم سب کے لیے اس میں کیا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دورہ قرآن 2023 DQ 2023. اور آج اس میں پارہ نمبر 10 ہمارا گول ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کو احسن درجے پہ کر سکیں. پورا کرنا ہی بات نہیں ہوتی, اصل یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد عمل پورا ہو جائے. اور ہم سب خاص طور پہ اس دفعہ جو صحابہ کرام کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں, تو اس کے بعد جہاں ہمیں شرمندگی ہوتی ہے, کئی لوگ شیئرنگ کر رہے ہیں تو وہ یہی لکھتے ہیں ہم روتے رہے, ہمیں شرم آتی رہی اور اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے, اس میں جھوٹ نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے, لیکن اسی کے ساتھ ہمارا گول نہیں سیٹ ہو رہا. آپ دیکھیے کہ اگر آپ گھر سے نکلیں اور آپ کہیں کہ میں نے بس 1 کلومیٹر چلنا ہے, تو بس ایک ہی چلیں گے, پھر آپ سوا نہیں چلیں گے. پہلے سے نظر ہوگی, ہاں اتنا رہ گیا, اتنا ہو گیا. اور اگر آپ گھر سے نکلتے ہوئے کہ میں نے 5 کلومیٹر چلنا ہے, تو 5 چلیں نہ چلیں, 2-3 تو چل ہی جائیں گے. آج ہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ایک ایشو جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ ہمارے گول ہی بڑے چھوٹے ہیں. ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے یا ہم ان کو اتنا جانتے بھی نہیں ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ پھیر دیا. تو آج کا یہ پارا والمو ہے, اور اس میں جو عظمت صحابہ کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے, اور میں اس سوچ کے ساتھ آج ایک ایک لفظ بولوں گی کہ اللہ ہم سے بھی وہ کام لے لے جو تو نے اپنے پیارے نبی کے اصحاب سے لیا تھا. اور وہ کیا تھا کہ وہ تاریخ ساز تھے, خود ساز نہیں تھے. ہم خود کو بنا رہے ہیں, صحابہ نے تاریخ بنائی تھی. ہمیں اپنا غم ہے, صحابہ کو اسلام کا غم تھا. انشاءاللہ آج میں بہت شروع میں زیادہ نہیں دے رہی کیونکہ پورا پارا اللہ اکبر کبیرہ. شاید ہی کسی ایک آیت پہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا سہلا سکیں کہ اچھا یہ نہیں تو وہ نہیں. پورا پارا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ صحابہ نے تاریخ بنائی. تاریخ ساز لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہجرتوں اور قربانیوں کے وقت پہ بھی آگے, جو ایثار کے وقت پہ بھی آگے, جو اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنے میں بھی آگے, اور پھر جب عدل اور انصاف کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی آگے ہوتے ہیں. تاریخ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضرت عمر بن خطاب کے دور کا ہے. انہوں نے مصر میں جس شخص کو حاکم بنا کر بھیجا تھا وہ عمر بن العاص تھے. ان کا دور تھا, مصر سے ایک شخص مدینہ میں آتا ہے اور ڈائریکٹ اپروچ, کوئی بیچ میں سابقے علاقے نہیں کہ صدر ہیں, وزیر ہیں اور مشیر ہیں, کیسے ملے, کس کے تھرو ملے. آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کی بنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے بولو. اس مصری نے کہا کہ مصر کے جو حاکم ہیں نا عمر بن العاص, انہوں نے مصر میں گھوڑوں کا ایک مقابلہ کروایا. عموماً حکمرانوں کو گھوڑ دوڑ کروانے کا شوق ہوتا ہے. اس میں سے ایک گھوڑا آگے بڑھ گیا, یعنی جیت گیا, اور وہ میرا تھا. پھر جب لوگ آ کر میرے گھوڑے کو دیکھنے لگے, یعنی لوگ خوش ہو رہے تھے کہ اچھا آپ کا گھوڑا جیتا ہے, تو عمر بن العاص یعنی حکمران کا بیٹا محمد وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے آ کر آگے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میرا گھوڑا بڑھ گیا. جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ کون ہے. ہیں تو میں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میرا گھوڑا آگے بڑھا ہے, یعنی یہ ڈرے نہیں, ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ حکمران کا بیٹا ہے اور اپنی اس پوزیشن کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اس پر محمد بن عمر یہ کہتے ہوئے مجھے کوڑے مارنے لگے کہ یہ لو اور میں شریفوں کی اولاد ہوں. یعنی یہ حکمرانی کے نشے میں جو اکثر جوان خون میں ہو جاتا ہے, کہا خسخا خسخا وانا ابن الکریم. بس اتنی بات حضرت عمر کے سننے کی تھی. جس صحابی سے ہمیں حدیث ملتی ہے اس نے کہا اللہ کی قسم اس کی بات سن کر عمر نے کچھ نہ کیا, صرف اس مصری سے کہا کہ آپ بیٹھیے. پھر انہوں نے عمر بن العاص کے نام ایک خط لکھا کہ جب تم کو میرا یہ خط پہنچے فوراً مدینہ آ جاؤ اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے محمد کو بھی لے کر آنا. रावी कहते हैं कि जब ये ख़त अमर बिन अलास के पास पहुंचा तो हैरान हो गए कि ये क्या टोन है, घबरा गए। अपने बेटे को बुलाया, कहा तुमने कुछ किया, कुछ सरजद हो गया तुमसे, क्या कुछ जुर्म किया? कहने लगा नहीं, क्योंकि उसने तो आदतन किया था ना, शौक से या सोच के तो नहीं किया था। उन्होंने कहा फिर उमर आपके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहने का मुझे नहीं पता। चलो दोनों बाप बेटा चल कर उमर के पास पहुँचते हैं और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम हम लोग उमर के पास मीना में थे, कितने में उमर बिन अलास आए, यानी वो पहुंच गए आपका हुक्म सुनकर और ये उस वक्त मीना में थे और उनके जिस्म पर एक चादर और एक अजार थी, यानी बिल्कुल सिंपल कपड़ों में। और फिर उमर उनकी तरफ मुतवज्जे हुए ताकि इनके बेटे को देखे, तो देखा बेटा बाप के पीछे खड़ा है। हजरत उमर ने कहा वो मिस्री किधर है? ये भी उधर ही थे। उन्होंने कहा ये मैं हूँ। हजरत उमर ने कहा कि ये कोड़ा पकड़ो और इस शरीफ ज़ादे को मारो और शरीफ ज़ादे को मारो। रावी कहते हैं कि मिस्री ने उसको इतना मारा कि खून आलूद कर दिया। फदरबहू हत्ता असखनहू, आज के बारे में भी ये लफ्ज़ आएगा। फिर हजरत उमर ने कहा कि अब अमर बिन अलास के सर पे भी मारो, क्योंकि खुदा की कसम इनके बेटे ने इन्हीं की बड़ाई की वजह से तुमको मारा, यानी कि वो हुक्मरान का बेटा हूँ, समझ तो आ ही रहा होगा। मिस्री ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन जिसने मुझे मारा था मैंने उसको मार लिया, यानी मुझे इसके बाप से कुछ नहीं लेना देना। हजरत उमर ने कहा कि खुदा की कसम अगर तुम इनको मारते तो हम तुम्हारे और इनके बीच में बिल्कुल खायल ना होते, यहाँ तक कि तुम खुद इनको छोड़ देते, यानी अगर तुम इनको भी मारना चाहते हो तो मार लो। फिर हजरत उमर ने अमर बिन अलास से कहा तुमने कब से लोगों को ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया जबकि उनकी माओ ने उनको आज़ाद पैदा किया, तुमने ये कब से समझ लिया कि ये रियाया और ये आम लोग जो हैं ये ग़ुलाम हैं? फिर आपने उसके बाद उस मिस्री की तरफ तवज्जो की और कहा इत्मीनान से वापस जाओ और अगर कभी आज के बाद दोबारा तुम्हें कोई शिकायत हुई, कोई ऐसी बात हुई तो मुझे लिखना। डायरेक्ट अप्रोच, ऐसे इंसाफ मिलता था। ये वाक़ा आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं बहुत सारी किताबों में। ये वाक़ा आपको क्या बताता है कि ये पूरी तारीख़ इंसानी का एक अनोखा वाक़ा है। और ये वाक़ा आपको मुझे बताता है कि सहाबा कौन लोग थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह के दीन की तारीख बनाई। सहाबा से पहले अल्लाह के दीन की हैसियत से सिर्फ एक तहरीक थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इस्लाम एक थ्योरी थी, कुरान और सीरत की सूरत में एक तहरीक थी। सहाबा के बाद अल्लाह का दीन एक हकीकी और अमली दीन बना। आप 10 रेसिपीज लिख कर रख लें, खाना तो नहीं बना। खाना बनाने के लिए आपको किचन में जाकर खड़ा होना पड़ेगा और फिर आपको वो सर्व करना पड़ेगा जो उस रेसिपी में लिखा है। सहाबा ने नबी के फरामीन, आपकी थ्योरेटिकल चीज़ों, आपके नज़रियात पे प्रैक्टिकली अमल किया। आपको कौन अच्छा लगता है जो सिर्फ बैठ कर आपसे तरकीबें पूछता रहे? नहीं, आपको वो अच्छा लगता है जो खाना बनाकर पेश करे। आपको वो नहीं अच्छा लगता जो पूछता है आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है? आपको वो अच्छा लगता है जो वो बनाकर दिखाते जो आपको पसंद है, जो आपको वो करके दे दे जो आपकी तलब है। सहाबा वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ बातें नहीं की। पिछले पारे के साथ ही चलिएगा, वो किरदार के गाजी थे। ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तू ने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी खैबत से राई। ये बातों से नहीं होता वल्लाही। आज जितनी मर्ज़ी खूबसूरत बातें मैं कर लूँ या आप में से कोई कर ले, तारीख़ नहीं बनेगी। आज उम्मत मुस्लिमा की तारीख तो बनी हुई भी बिगड़ रही है। आज हमारे बच्चे इस्लाम से इतने दूर हैं और ख़ास तौर पे उससे ज़्यादा इस्लाम की तारीख से दूर है, इसलिए कि उनको पता ही नहीं कि इस्लाम क्या था और इस्लाम के प्रैक्टिकल कौन थे। मेमार इस्लाम थे, मिस्त्री और मज़दूर थे। बैठ के बातें करने से कभी भी इमारतें नहीं बनती, बड़ी बड़ी चीज़ें बातों से नहीं काम से होती हैं। तो ये तारीख साजी का काम आज इस पूरे पारे में आप पढ़ेंगे। पूरी कोशिश करूँगी कि हर जगह कुछ ना कुछ आपको एक लुक्मा तो दे दूँ ताकि आप सोचने में पड़ जाएं कि सिर्फ जंगें नहीं लड़ी, हिजरतें भी की। और सिर्फ हिजरतें नहीं की उन्होंने अनसार बन के भी दिलों को थामा और हाथों को थामा। तो ये वो लोग होते हैं कि जो तारीख बनाते हैं। इसके बरक्स आज का मुसलमान क्या बना रहा है? खुद को बना रहा है। पहले खुद को बनाता है, फिर अपने बच्चों को बनाता है, फिर अपना घर बनाता है, फिर बच्चों का घर बनाता है, फिर उनका बनाता है। पहले अपनी शादी की फिक्र करता है, फिर उनके बच्चों की शादियाँ। पहले अपना घर बड़ा करता है, फिर उसके बाद बच्चों के घर बड़े करता है। पहले उसको अपनी सेहत की फिक्र होती है, फिर बच्चों की। देखिए ये कोई बुरी बातें नहीं है, लेकिन सिर्फ खुद को पूछते रहना। आप अपने आप को पहचानना चाहते हैं ना कि आप कहाँ खड़ी हैं, तो अपने आप को अपनी सोचों में पहचानिए, अपनी फिक्रों में पहचानिए, अपनी ख्वाहिशों में पहचानिए, अपनी तमन्नाओं में पहचानिए कि आपको हर वक्त गम क्या है, किस चीज़ के ख्वाब देखती हैं। अल्लाह मुझे इन बच्चों की खुशियाँ देखने के लिए ज़िंदा रखना। अल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में एक बड़े घर में अपने बच्चों को देख लूँ। कोई बुरी बात नहीं होती है अगर हम यहीं पर रुकना चाहते हैं। तो सहाबा कराम हकीकत में वही गिरोह थे जिनको अल्लाह ताला ने रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन का टाइटल दिया था। ये वो लोग थे कि जो तारीख का रुख मोड़ गए। और याद रखिए कि अल्लाह ताला ये चाहता था कि इसके दीन के पीछे एक तारीखी नमूना हो, यानी अल्लाह एक रोल मॉडल चाहते थे, और ये कोई सादी बात नहीं थी। ये ईंटों से बनी हुई दीवार नहीं थी कि आपने एक बिल्डिंग बना ली और उस पर लिख दिया तारीखी इमारत, ये शाही कला है जी, ये फलां है। ये इंसानों को जोड़ के बनी हुई इमारत थी। कान नहुम बुनजान मरसूद, आगे जाके पढ़ेंगे सूरह सफ में, सीसा पिलाई दीवार थे। ईंट तो क्या बोलेगी, वो तो जहाँ आपने लगा दी लग गई, ठोकेंगे ठुक जाएगी, बीच में उसके सीमेंट डाल देंगे तो वो जुड़ जाएगी। इंसान गोश्त पोश का इंसान, मैं अना आई एम, मेरी ये मर्जी। कभी आपको गर्मी लगती है, कभी आपको सर्दी लगती है, कभी आप खुश होते हैं, कभी आप परेशान हैं। सहाबा को पहले ठोक बजा के नबी सल्लम ने ईंटें बनाया। नाजुक लोग रॉ मटेरियल बन जाए ना तो वो इमारतें गिर जाती हैं। और आप लोग बुनियादों वाले लोग हैं, जो बुनियाद में ईंटें लगेंगी वो गर्मी सर्दी सेहत बीमारी खुशी गम और हर जज्बे से ऊपर होंगी, फिर इमारत दूर तक जाएगी। आप सोचिए ना, अगर किसी इमारत की बुनियादें शीशे की बना दें तो वो एक टेबल पे रखा हुआ खूबसूरत सा एक शोबिस तो हो सकता है, वो आगरा का ताजमहल भी हो सकता है, वो शाही कला हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जाके कोई रह नहीं सकता। आज उम्मते मुस्लिमा नाजुक हो गई, छोटी छोटी बातों पे हम परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ने जहाँ भी कोई बड़ा काम लिया, और सहाबा ने एक आलमी इनकलाब बर्पा किया। और ये वो चीज़ें हैं जिसको आप देखें तो आपको समझ आती है कि हज़रत उमर का ये किस्सा मैंने आपको क्यों सुनाया, कि आप सिर्फ आज के पारे में से सिर्फ लड़ाई भड़ाई ना सुन लें, कि सिर्फ उनको जी लड़ना ही आता था, और गाजी तो वो होता है जो मैदान जंग से सही वापस आता है, और शहीद वो होता है जो मैदान जंग के अंदर जाके पूरा हो जाता है। ये तो चंद घंटों की जंगें थी, सारी भी जंगें जमा कर लेना नबी की जो आपने अपने पूरे मदनी दौर में की और साहबा की, तो वो एक साल से भी कम का अरसा बनता। लेकिन वो जो 23 साल में से बाकी 22 साल थे वो प्रैक्टिकल मुस्लिम थे, देवर प्रैक्टिकल मुस्लिम। साहबा की नमाजें जमा कर लें 2-4 साल बन जाएंगे, मुस्तकिल सारी नमाजें रोजे देखें, बाकी वक्त उनकी अमल की चीज़ थी। और याद रखिएगा कि ऐसा इंसाफ और ऐसी मसावात कायम करना, इसको वजूद में लाने के लिए कुर्बानियों की ज़रूरत होती है। इसके लिए ज़रूरी था कि पहले वो एक ऐसा मुकम्मल इनकलाब लाया जाए जो रसूल की क़्यादत में सहाबा करम ले आए, और फिर इसके लिए ज़रूरत थी कि मुआशरे में सहाबा जैसे मिसाली इंसानों का गलबा हो, कि जो खलीफा एक हाकिम के बेटे को इस जुर्म पे कोड़े मार सके कि उसने किसी दूसरे को बेगुनाह मारा, और वो खुद अपने बेटे के इस जुर्म पर पहले उसको कोड़े मार चुका हो। यानी उस बेटे मोहम्मद ने हज़रत उमर के कहने पे कोड़े कैसे खा लिए, क्योंकि अमर बिन अलास ने बेटे को इससे कई ज़्यादा कोड़े मार दिए हुए थे। आज ये नहीं है, हमारे बच्चे ज़माने की गर्म तर नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि घरों से पैम्पर्ड हैं, लाड हैं, नखरे हैं। तो लिखिए अस्हाबे रसूल ने ये सारी महंगी कीमत अदा की। वो अपनी ज़ात के लिए जीने की बजाय अल्लाह के दीन के लिए जिए। इसके बाद ही ये मुमकिन हुआ कि इनके ज़रिए से अल्लाह के दीन की मतलूब अमली तारीख बनी। और ये वो दौर था कि जिसको आज भी इंसानियत पुकार रही है। चारों तरफ आपको परेशानियां हैं, घबराहटें हैं, मुश्किलात दिखती हैं, लेकिन अमली बातें कम होती हैं। तो आज ये जुमला हम बार बार बोलें और सुने कि तारीख साज थे, खुद साज नहीं। तारीख को बनाने वाले थे, खुद को बनाने वाले नहीं। उन्होंने तारीख रकम की, खुद को रकम नहीं किया। हम अपनी रकमें गिनते रहते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा पारे का टॉपिक और मौजू भी देख लेते हैं। आज का पारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पारा है। सूरत अल अनफाल का जितना हिस्सा इसमें और फिर सूरत तौबा का जितना हिस्सा इसमें, उसमें आपको मुस्तकिल अल्लाह की एक सुन्नत दिखेगी जो अभी पहले रुकू से शुरू होगी, मैं पढ़ूंगी तो आप समझ जाएंगे। इहकाके हक और इबताले बातिल, नहीं समझ आया? अल्लाहुम्मा अरिनी हक्कन हक्कन वरज़ुक़ना इत्तबाहु वारिनी बातिलन बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु, यानी हक का हक होना और बातिल का बातिल होना। अभी पहले रुकू के तर्जमे में इंशाल्लाह आपको इस लफ्ज़ पे वजाहत दूंगी। आगे चलते हैं आज के पारे की शख्सियत, एक नहीं 10, अशर मुबशरा। पिछले पारे से टॉपिक चलता आ रहा है बद्री सहाबा का, जो तकरीबन 300 प्लस यानी 313 थे। उन 313 में से कुछ और भी निखरे हुए, कुछ और भी मंझे हुए वो थे जिनको नबी सल्लम ने दुनिया में जन्नत की खुशखबरियाँ दी, और वो थे अशरा मुबशरा, वो 10 लोग जिनको खुशखबरियाँ दे दी गईं। और उनके नाम लिख लीजिए, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो, उस्मान, अली, तलखा बिन उबैदुल्ला, ज़ुबैर बिन अवाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास, सईद बिन जैद और अबू उबैदा बिन अलजर्राह रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ये 10 लोग थे। इनकी क्या खूबियाँ हैं? अम्बिया कराम के बाद सहाबा कराम की मुकद्दस जमात तमाम मखलूक से अफसल और आला है, ये हम पढ़ चुके हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि ज़ादुल खैर से ये बात सुनते आ रहे हैं। और ये अजमत और फजीलत सिर्फ़ उन सहाबा कराम को हासिल हुई जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में मगफरत, जन्नत और अपनी रज़ा की ज़मानत दी थी। सहाबा कराम के ईमान और वफा का अंदाज़ अल्लाह को इतना प्यारा लगा कि इसे बाद में आने वाले हर ईमान लाने वाले के लिए कसौटी बना दिया, क्राइटीरियन, तराजू। और इनमें से ख़ास तौर पर 10 वो हैं जिनको दुनिया में खुशखबरी मिली। इसके बारे में नबी सल्लम की एक रिवायत मौजूद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये अबू दाऊद की रिवायत है 4650, सईद बिन जैद जो ख़ुद भी इन्हीं में से एक हैं, और आपको पता होगा कि ये हज़रत उमर के बहनोई हैं, कि जो हज़रत उमर के कबूल इस्लाम के वक्त वहाँ मौजूद थे। ये फरमाते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के नबी पर कि मैंने आपको फरमाते सुना 10 लोग जन्नती हैं, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान, अली, तलखा, ज़ुबैर बिन अवाम, ज़ाद बिन मालिक और अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती हैं रदी अल्लाहु अन्हुम, और अगर मैं चाहता तो 10वें का नाम लेता। वो कहते हैं, लोगों ने अर्ज़ किया वो कौन है, तो फिर खामोश रहे। लोगों ने फिर पूछा वो कौन है, तो कहने लगे वो सईद बिन जैद है, यानी वो खुद थे। तो अल्लाह के नबी की ये जो पुकार थी ना, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलखा बिन उबैदुल्ला फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, सईद बिन जैद फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जराह फिल जन्ना, तो ये खुशखबरी भी इन लोगों को मिल गई। ये क्यों मिली, ये कैसे मिलती हैं, ये चीज़ें हम बीच में पढ़ते रहेंगे, सुनते भी रहेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे और अमल की दुआएं भी मांगते रहेंगे, ताकि हमें भी तो पता चले कि वो लोग जिन्होंने तारीख साजी का काम किया, आखिर उनकी खूबियां क्या थी। आप देखिए, किसी का बड़ा मज़े का खाना खाते ना, तो आप एक सवाल ज़रूर करते हैं, इसमें डाला क्या है, ये हलवा बना किस चीज़ का। बाद लोग बूझो तो जाने का सेशन शुरू कर देते हैं, बस खाइए ना, फिर खा के बताइए ना, फिर चार में से कोई दो बता के दो छुपा लेंगे, या ये ऐसा बना ले तो अच्छी बात है, आप ही बनाइए, हमें क्या ज़रूरत है, बनाइए और भेजिए। बिल्कुल सहाबा कराम के जो इंग्रेडिएंट्स आप देखते हैं ना, वो इस बारे में, किसी कौशरा मुबशरा कौन सी चीज़ बनाती है, क्यों बनाती है, और इन सब के बारे में अगर आप गौर व फिक्र करें ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा इनमें से हर एक 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 छोटा छोटा बता देती हूँ, चारों को छोड़कर। पहले चार खुलफा के तो हम जिक्र कर चुके ना, क्याम खिलाफत, यानी उनकी सबसे बड़ी खूबी खुलफा राशिदीन थे। हज़रत तलखा को देख लीजिए, तो उनके बारे में हज़रत क़ैस बिन अबी हाजिम जो ताबई थे कहते हैं, मैंने तलखा का वो हाथ देखा जो साल हा साल बाद भी बिल्कुल बेकार और शल था। उन्होंने इस हाथ से ग़ज़वे अहद के दिन नबी सल्लम को कुफार के हमलों से बचाया था, बुखारी की रिवायत है। तलखा ने ओहद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ख़ुद को एक ढाल के तौर पे पेश कर दिया था, क्योंकि उस वक्त ढालें भी नहीं थी, बैरियर, जुन्ना। वो तलवारों को अपने हाथ पर रोकते थे, कोई तलवार आपकी तरफ लाता तो आप आगे अपना हाथ ले आते, हत्ता कि उनके हाथ पे इतने जख्म थे कि गिने नहीं जा रहे थे। दर्द नहीं होती थी उनको, कोई सेप्टिक नहीं होता था उनको, कोई उस जख्म के ऊपर टेंक्चर और पट्टी और मरहम की जरूरत नहीं होती थी। और जब जंग खत्म हुई तो अल्लाह के नबी ने इस प्यारे जान निसार साहबी के लिए कहा कि उहद की तो सारी जंग तलहा जीत गए। ये तो तलहा की जान निसारी और फिदाकारी का दिन था। और आपको पता है कि हजरत तलहा उबैदुल्ला के बेटे और कुरैशी थे, इनकी कुनियत अबू मोहम्मद थी, बाज़ इनको अबू अमर कहते थे और बाज़ अबू मोहम्मद। और पुराने शुरू दौर के मुस्लिम, और यहाँ ये बात लिखें कि जो अशरे मुबशरन ये सब अर्ली मुस्लिम्स हैं, आज के बारे में भी तस्करा आएगा। और ये सहाबा कौन थे, इसमें हमने आज से कोई मेरे हले 3 या 4 ईयर्स अगो एटलांटा में एक कोर्स किया था अशरे मुबशरा का, उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये सहाबी गज़वे बदर के अलावा तमाम गज़वात में नबी सल्लम के साथ शामिल हुए थे। क्यों नहीं थे गज़वे बदर में शामिल हुए, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने ही इनको कोई काम दिया हुआ था और ये वहाँ गए थे। गंदमी रंग था, बाल कसरत से थे, बड़े वजीह और ख़ूबसूरत थे। और 64 ईयर्स की उम्र में जंगे जमल के मौके पर 20 जमादियुसानी में शहीद हो गए और बसरा में दफन किए गए। तो इनकी खूबी क्या मिली कि तलहा आज की जंग जीत गए। उसके बाद हज़रत ज़ुबैर का नाम ले लीजिए, ज़ुबैर बिन अवाम, नबी के फूफीज़ाद भाई भी थे। हज़रत जाबिर कहते हैं कि ग़ज़वे अहज़ाब यानी खंदक के मौके पर एक दिन नबी करीम ने फरमाया, कौन शख्स है जो दुश्मन के लोगों की खबर मेरे पास लाए। आप कहते हैं कि जंगों में CIDs होती थी, तो पूछा जाता था कोई ख़बर लाएगा। ठंड बहुत थी, सर्दी, और आप कहते सहराओं में अगर गर्मी ज़्यादा है ना तो सर्दी भी ज़्यादा है, सब खामोश। लेकिन ज़ुबैर उठते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी मैं लाऊंगा। आपने फरमाया कि हर नबी के हवारी यानी ख़ास दोस्त, सीक्रेट दोस्त, मददगार होते हैं और मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। और ये अपने घोड़े पे खुली छत के नीचे गए, ज़रा गाड़ियाँ तो नहीं थी, कोई एसी या हीट लगाकर। आज भी नॉर्वे में शायद लास्ट 2-3 डेज पहले -6 था टेम्परेचर, तो अब वो -6 उसको तो नहीं चुभेगा जिसने वूलन जैकेट पहनी हो और जिसने सारे ऊल के कपड़े पहने हो। लेकिन ये बिल्कुल ओपन, जो इनके पास थोड़े बहुत कपड़े होते थे उसमें थे, और वापस आकर कहते हैं वल्लाही मुझे बिल्कुल सर्दी नहीं लगी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे इर्द गिर्द किसी ने कंबल डाल दिया। और मैं आपको गवाही दे सकती हूँ इस बात की, आप जो काम जितनी मोहब्बत और प्यार और सच्चाई के साथ करेंगे ना आपको गर्मी लगेगी ना सर्दी, ना भूख ना प्यास, आप एक दो नहीं आप तीसरा पारा भी करा लेंगे, शर्त यह कि आपका दिल उसमें हो। हम जब नेकियां का कोई काम करते हैं ना तो कभी कभी अल्लाह में आजमाता है, मेहमानों को भेजकर, बीमारियों को भेजकर, तकलीफ़ों को भेजकर, परेशानियों को भेजकर, कि फरिश्ते ज़रा इसको चेक करके आओ ये पक्का गल गया। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद खंडिया खोल कर देखते हैं गोश्त गल गया, अल्लाह आपको मुझे चेक कर रहा होता है, इसका दिल गला है, ये नरम हुआ है, इसकी आँख बही है, इसके अंदर कोई टेंडर डालने की ज़रूरत तो नहीं, कोई सॉफ्टनर डालने की ज़रूरत नहीं। और सहाबा कराम ऐसे मौक़ों पे जीत जाते थे। हम अक्सर ऐसे मौक़ों पे या तज़िरून इलैकुम की कैटेगरी में आते हैं जो अगले पारे में हम पढ़ेंगे। तो बहरहाल हवारी रसूल कहलाए और ठंड भी नहीं लगी। आप अल्लाह का काम कीजिए, आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपकी गर्मी सर्दी ऐसे मेंटेन होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और फिर इनके बारे में मज़ीद बातें फिर किसी मौके पे पढ़ लीजिएगा, लेकिन याद रखिए कि अल्लाह के नबी ने इनको जो हवारी कह दिया, ये टाइटल हर चीज़ से बड़ा है। और ज़ुबैर अवाम के बेटे थे, हज़रत ज़ुबैर, यानी आप देखिए ना तो एक एक के पीछे कहानी है। नबी के रिश्तेदार भी थे और बहुत कम रिश्तेदार जो आपकी तरफ आए थे। फिर इसी तरह साद बिन मालिक, बहुत के दिन जब साद बिन मालिक भी हज़रत तलहा की तरह नबी का दिफा कर रहे थे ना, तो अल्लाह के नबी ने इनको एक बड़ा प्यारा कमेंट दिया था, कॉम्प्लीमेंट बल्कि दिया था कि साद तीर चलाओ मेरे माँ बाप तुम पर सदक़े। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, यानी इनके सिवा ये खूबी किसी और को नहीं मिली। तो बहरहाल साद बिन वक्कास, इनका नाम मालिक बिन वहब था और कुनियत के साथ ये पुकारे जाते थे, इनको भी अल्लाह के नबी से ये खुशखबरी मिली थी। बिल्कुल आगाज़े इस्लाम में ही मुसलमान हुए। 17 साल की इनकी उम्र थी जब ये मुसलमान हुए। आज आपके मेरे 17 साला बच्चे के दिल में अल्लाह करे ये हो डल जाए। वो खुद कहा करते थे, मैं तीसरा मुसलमान हूँ, आई एम द थर्ड। मुझसे पहले सिर्फ 2 लोग मुसलमान हुए थे और अल्लाह की राह में इस्लाम की तरफ सबसे पहला तीर चलाने वाला मैं हूँ। इनकी खूबी आपको पता क्या है? नबी के साथ तमाम गजवात में शरीक हुए। आज हम में से कौन है जो कहता है मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया, मैं हर प्रोग्राम में साथ था, मैंने हर लेक्चर अटेंड किया, मैं सुबह में भी था, मैं शाम में भी था। साहबा की असल में ना ये थी तलब, पीछे नहीं रहना। वफी ज़ालिका फल यतनाफसिल मुतनाफिस। हम लीस्ट मिनिमम कहते गुजारा तो हो ही रहना, घर से सुन लेंगे, बाद में सुन लेंगे, ना भी सुने तो हमें तो बहुत आते हैं, हम तो सुनाते हैं, है ना ऐसे टोन्स। साहबे कराम कहते थे कि अपना स्टैंडर्ड लो नहीं होने देना। मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनना है जिसने पूरे साल में छुट्टी नहीं की। आपको तो सवीलुल जन्ना कोर्स ऑलमोस्ट 280 के अराउंड उसके डेज होते हैं ना, और 2 साल 4 माह 5 माह रफली स्पीकिंग के 2.5 साल का कोर्स होता है। उसके बावजूद भी हर कोर्स में से कुछ स्टूडेंट ऐसे आ जाते हैं सामने जिन्होंने एक भी छुट्टी नहीं की होती। क्या बीमार ना हुए होंगे, क्या उनके बच्चों की शादियां ना हुई होंगी, क्या हज और उमरे पे नहीं गए होंगे, ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है, ये रहेगा। लेकिन जब आप किसी चीज़ की कमिटमेंट ले लेते हैं तो वो है। और आपको तो इनकी एक और खूबी, मुस्तजाबु दावत। लोग इनसे दुआएं कराते थे, आम और ख़ास लोग। एक तो इनसे दुआएं कराने का एक तो हमारा था ना कि दुआ कर दीजिए, दुआ में याद रखिए, ये नहीं कहते थे। वो कोई ऐसा काम करते थे कि साथ उनको खुश होकर दुआ दें, और दुआएं ली जाती हैं, दुआओं के लिए कहा नहीं जाता। बाद लोग दिल भी दुखाते हैं और फिर कहते हैं दुआ में याद रखिएगा। लोग इनकी बददुआ से बहुत डरते थे, कहते थे अगर साथ ने कुछ कह दिया तो वो हो जाना। और क्यों भला ये मुकाम क्यों हासिल हुआ? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इनके हक में दुआ की थी कि अल्लाह साथ की दुआएं कबूल फरमा। और कहते हैं कि हज़रत ज़ुबैर के अलावा हज़रत साद ही वो खुश नसीब हस्ती हैं जिनके लिए अल्लाह के नबी ने अपने माँ बाप को जमा किया। यानी अलग अलग मौाक़े पर इन दोनों को मुखातिब करके कहा था कि मेरे माँ बाप तुम पर सदक़े। ये अजीम एजाज़ इसके सिवा और किसी को नहीं मिला। गंदमी रंग के थे, जिस्म पे बाल भी थे, और 55 हिजरी में इनका इंतकाल उस महल में हुआ जो उन्होंने मदीना के करीब वादिय अतीक में बनाया था। नमाज जनाजा उनकी मदीना मुनव्वरा में पढ़ाई गई और उस वक़्त के हाकिम जो थे इब्नुल हकम, उन्होंने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बकी में इनकी तदफीन हुई थी। इस वक्त हज़रत साद की उम्र 70 से कुछ साल ऊपर थी और अशरे मुबशरा में सब के बाद इनका इंतकाल हुआ। यानी आउट ऑफ 10 ही वॉज द लास्ट वन। हज़रत उमर ने इनको कूफा का हुक्मरान मुकर्रर किया था, फिर बाद में हज़रत उस्मान ने भी इसी मनसब पर इनको कूफा भेजा था, और सहाबा और ताबेईन की एक बड़ी जमात को इनसे अहादीस का शर्फ हासिल हुआ सुनने और उसे रिवायत करने का। और अल्लाह की राह में सबसे पहला तीर साथ नहीं चलाया था। वो ख़ुद भी अपने बारे में कहते थे, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। क्या कहा जाए, इनकी तो इतनी खूबसूरत कहानियाँ हैं कि आप सोचें तो आप हैरान हो जाएं। हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी एक मरतबा किसी गजवे से वापस आए तो डर था कि दुश्मनों में से कोई छुप के रात को अतवारी ना कर दे, तो आपने कहा कि काश आज की रात कोई नेक शख्स मेरी निगहबानी करे और मैं सुकून से सो लूं। इतने में कहती हैं मैं अपने घर के बाहर हथियारों की आवाज़ आई, जैसे कोई शख्स अपने तीर तलवार कमान लेकर पहरे पे खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी ने पूछा कौन है? जवाब मिला मैं साध हूँ। आपने फरमाया इतनी रात गए तुम यहाँ कैसे आ गए? कहा अल्लाह के नबी मुझे आपके बारे में खौफ हुआ। अल्लाह के नबी घर बैठकर बात कर रहे हैं, अल्लाह ने इनके दिल में डाल दिया। ये भी बड़ी बात है, दिल को दिल से राह होती है। कहने लगे मेरे दिल में आया कि कहीं दुश्मन आपको नुकसान ना दे और मैं आपके घर की निगहबानी के लिए आया हूँ, यानी आपके चौकीदार बन रहे हैं। अल्लाह के नबी ने साथ को दुआएं दी और फिर इत्मीनान से सो गए। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। फिर अगला नाम है अबू उबैदा, इनका लक़ब है अमीन उल उम्मा। हज़रत अनस कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हर उम्मत का एक अमीन होता है, यानी अपने और बंदों और अल्लाह के हकूक़ के बारे में वो बहुत ही अमानदार होता है, और इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा बिन जराह हैं। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। आपको याद भी होगा, ये किस्सा आपने सुना होगा कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी ने यहूद के कहने पे कि आप आकर हमारे दरख्तों पे लगे हुए फल को गिनवा लीजिए, क्योंकि उनसे उसका खराज लिया जाता था। तो आपने कहा ठीक है, मैं कल इस उम्मत के अमीन को भेजूंगा। और हज़रत उमर कहते हैं कि उस वक्त से पहले मेरी कभी ख्वाहिश ना हुई कि अल्लाह के नबी मुझे भेजें और मुझे ये लकब मिल जाए। लेकिन अगले दिन जब सब बैठे थे तो उमर करे, मैं अपनी जगह से यूं उठ उठ के गर्दन दिखा रहा था कि शायद देखकर नबी का ख्याल है, जैसे हमें जवाब आता हो तो हम उछल रहे होते हैं, और ना आता तो बिल्कुल मासूम से नज़रें नीचे करके बैठ जाते हैं कि हम तो बादअबी बड़े हैं, बादअबा नसीब। खैर, उस्ताद को पता लग जाता है फिर भी कि किसको कितना आता है। तो बहरहाल यह है कि अल्लाह के नबी ने फिर उमर को नहीं, अबू उबैदा को भेजा और इनको ये खुशखबरी मिल गई। ऐसी बड़ी बात है। फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह के नबी ने एक मौके पे जो कहा था कि हिरा पहाड़, यानी गार पे जा रहे थे, और उस पहाड़ पे कहा कि तुम पर एक नबी, एक सिद्दीक और कुछ शहीद हैं। तो बहरहाल अब इनकी सारी बातों में से जो भी चीज़ आपके साथ मैं रख सकी इस वक्त के हिसाब से वो रख दी। बाकी बातें इंशाल्लाह हम अलग से अलग करेंगे।